भगवान का विश्व रूप का वर्णन होता है। तो विश्व रूप का वर्णन जो होता है विराट रूप, वास्तव में विराट रूप एक व्यक्ति है पर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। पर जो भौतिक जगत में लोग होते हैं, जो कोई बड़ा चीज मतलब क्या, कोई कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति होगा तो उनका दृष्टि से बड़ा यानी भौतिक आकृति से, भौतिक मात्रा से बड़ा होना। कोई बड़ा आदमी है तो उसका बड़ा कार होना चाहिए, उसका बड़ा घर होना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। तो जिस तरह लोग सोचते हैं उनके लिए बताया जाता है भगवान का इतना बड़ा रूप है कि जो बड़े बड़े वृक्ष है वो भगवान के शरीर के रूप है, जो पहाड़ है वो उनकी हड्डियां है, जो ग्रह है वो उनके शरीर के अंग, इस तरह से। तो वह विचार के चिंतन के द्वारा, इस तरह विचार चिंतन के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य पे चिंतन होता है, उससे नम्रता निर्माण होती है। छोटा फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आप हृदय परमात्मा चिंतन करो, और फिर उसके बाद में सृष्टि के शुरुआत से वर्णन होता है। तीसरे स्कंद में जो वर्णन आता है सृष्टि की शुरुआत कैसे, ब्रह्म महाविष्णु गर्भोदय विष्णु आए, गर्भोदय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और फिर तभी वराहदेव का वर्णन आता है। वराहदेव का वर्णन क्यों आता है, क्योंकि तभी पहले हिरण्याक्ष अपना आतंक करने का प्रयास करता है। जो पहला अवतार विस्तारित का वर्णन आता है वह है वराहदेव, तीसरे स्कंद में आता है। और फिर ऐसे आगे आते हैं तो कपिल देव का वर्णन आता है। तो ये सारे अगर 335 अध्यायों का हम फ्लो श्रृंखला कर देखेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ अवतार के तत्वों पर जोर दे रहे हैं। तो जब वराहदेव आते हैं तो प्रेम का आदान प्रदान जरूर है पर बहुत अधिक नहीं है। क्या प्रेम का आदान प्रदान है कि जब पृथ्वी फैलित हो जाती है तो भगवान पृथ्वी को अपने नाक से उठा लेते हैं और फिर उसको सांत्वना देते हैं। और फिर जब उसे काफी चल रहा होता है, शाम होने लगती है, तो ब्रह्मा जी जब बोलते हैं कि कृपया आप अधिक खेलो मत, आप ये असुरों की शक्ति रात को अधिक हो जाएगी, कृपया आप उनका जल्दी वध कर दो। तो तभी ऐसे बताया गया है कि एक प्रेम पूर्ण दृष्टि से भगवान ब्रह्मा जी और देवताओं की ओर देखते हैं। तो वराहदेव जो है उनके साथ उनकी कोई माँ, उनकी कोई पिता, उनके कोई भाई बहन पुत्र, और उस तरह से जो अंतरंग संबंध है उसका कोई वर्णन नहीं। तो उसके बाद में जो है कपिल देव का वर्णन था, कपिल देव का विस्तारित वर्णन है। और कपिल देव जो भागवत के अंत में जो बताया जाने वाला है कि भगवान न केवल हम सब भगवान हमारे पिता है पर वास्तव में भगवान हमारे पुत्र की भूमिका भी ले सकते हैं। तो उसकी झलक यहाँ पर मिल रही है। पर यद्यपि भगवान कपिल देवहूति के पुत्र की भूमिका लेते हैं, फिर भी वास्तव में देवहूति और कपिल देव में वात्सल्य रस का रस, वात्सल्य रस का भाव नहीं है, क्योंकि देवहूति जानती है कि कपिल देव मेरे पिता है और मेरे पिता है क्यों परम पिता है। और अगर हम उनका उपदेश देखते हैं तो वो ज्ञान से भरा हुआ है। तो जो देवहूति और कपिल देव का रिश्ता है, पिता माता और पुत्र का है, पर फिर भी पुत्र भगवान है। तो फिर भी झलक भी जा रही है तो, पर उसका जो रस है उसका आस्वादन वहां पे नहीं होता है। और इसलिए वहां पे जो देवहूति का रस है वह रस जो है वो यशोदामणि के रस के समान बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण कभी यशोदामणि को उपदेश नहीं दे सकते, यशोदामणि उनको उपदेश देते, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो वास्तव में उसके बाद में चौथा स्कंद जब आता है तो चौथे स्कंद में कई अवतार का वर्णन है। सबसे पहले बताया गया है कैसे जब सती का विवाह की लीला जब आती है तब विष्णु स्वयं आते हैं, और फिर सब जो दक्ष का जैसे उद्भस्त हो गया है उसके बारे में वर्णन आता है। उसके बाद में ध्रुव महाराज जब प्रतिष्ठा करते हैं तो विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। तो वहां पे जो विष्णु है एक तरह से अवतार है वो, क्योंकि तो भगवान का अवतार मतलब अवतरती जो नीचे ऊपर नीचे आते हैं, पर वह जो अवतार है वो कुछ संक्षिप्त समय के लिए आते हैं, ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद में पृथ्वी महाराज आते हैं, और पृथ्वी महाराज अवतार है पर वे क्या वही अवतार है। तो इसीलिए उनके साथ जो पाठ रस है उसका प्रश्न भी नहीं होता है। उसके बाद में जो पंचम स्कंद आता है उसमें ऋषभदेव का अवतार आता है। तो ऋषभदेव का अवतार जो है यह वास्तव में भले ही गणोदन का अवतार है पर वास्तव में उनके उनके पुत्र भी है। पर अगर हम भागवतम पढ़ते हैं या अन्य पुराण भी पढ़ते हैं तो जो रथ है वो तो थोड़ा विकास हो रहा है क्योंकि शब्द एक व्यक्ति है पर हम देखते हैं उनकी भूमिका क्या है। ये उत्तरी देते हैं आदेश देते हैं और फिर ये प्रदर्शन करते हैं वो क्या महावैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए वहां पे भी विस्तारित रूप से भगवान से रथ के आदान प्रदान की संभावना नहीं है। उसके बाद में एक बहुत ही जटिल भाग आता है श्रीमद् भागवतम का वह है ब्रह्मांड की रचना। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मांड की रचना का वर्णन क्यों दिया गया है। बताते हैं कि ये इतना विशाल और जटिल ब्रह्मांड के बारे में हम विचार करते हैं तो उससे हम समझते हैं कि इसके निर्माता कितने विशाल होंगे तो उनके प्रति आदर निर्माण होगा। छठे स्कंद में जब वर्णन आता है अजामिल की लीला का तो अभी क्या अजामिल की लीला में अभी तक भगवान की शक्ति भगवान के सामर्थ्य के बारे में वर्णन आता है। तो छठे स्कंद में पहली बार विस्तारित रूप से या एक ड्रामेटिक एक नाट्यात्मक रूप से भगवान की कृपा की जरूरत मिलती है उनके नाम के द्वारा। उनके नाम के द्वारा कैसे पाप से त्यागी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है उसका वर्णन आता है। उसके बाद चित्रकेतु रुद्राक्ष यह विस्तार लीला आती है। और यहाँ पे तो क्या हो रहा है भागवतम में दो चीजें हो रही है कि कैसे भगवान के व्यक्तित्व भगवान के रसपूर्ण स्वभाव का की जो झलक है अधिक 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 दी जा रही है। और इस तरह से क्या हो रहा है भक्ति का प्रदर्शन भी ऊंचा 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 होते जा रहा है। तो जो यहाँ पे वृद्धासुर जो है उनकी जो भक्ति है उनकी जो प्रार्थनाएं है वो बिल्कुल शुद्ध भक्ति प्रार्थना है। और किस तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास भक्ति होगी तो फिर भौतिक जगत से वे भौतिक दृष्टि से वे वो असुर कुल में हो या असुर कुल में हो उसकी परवाह नहीं है। तो अगर भक्ति है तो निज जन्म है उसको भी तुच्छ माना जाता है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है माना जाता है। और फिर जो भक्ति के रस का सबसे पहला विस्तारित झलक जो है वह सातवें स्कंद में आता है। सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने देव का वर्णन है तो उसमें हम देखते हैं कैसे प्रहलाद की शुद्ध भक्ति कितनी अध्यायों तो बताई गई है। और फिर नरसिंहदेव बड़ी भीषण अवतार है और सारे देवी देवताएं भी उनसे भयभीत हो जाते हैं वो केवल हृदय को शुभ ही नहीं पर देवी देवताएं भयभीत हो जाती है। पर उनका जो आदान प्रदान प्रहलाद महाराज से है वह इतना मनोहर है। प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हे प्रहलाद कुछ वर मांगोगे तो प्रहलाद बोलते हैं प्रभु मैं तो आपसे वर मांगने के लिए भक्ति नहीं की है क्योंकि पहली प्रार्थना ही इतनी सुंदर है। वो प्रहलाद महाराज दो बार प्रार्थनाएं करते हैं सातवें स्कंद के नौवे अध्याय में उसका शीर्षक प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। और फिर दसवां अध्याय जो है कि प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ भक्त उसमें क्या है सातवें स्कंद में नौवे अध्याय में जब प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं पूरी करते हैं अपनी तो उसके बाद में नरसिंह जो प्रसन्न होकर कुछ बोलते हैं तुम्हारा कल्याण है और तुम वर मांगो। जब वर मांगो ऐसे बोलते हैं तो उसके बाद प्रहलाद महाराज पुनः प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थनाएं हैं उस सबसे पहले प्रथम प्रार्थना क्या बोलते हैं कैसे साधारणतः लोग जो होते हैं भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान मेरे पास ये नहीं है ये समस्या है वो कमी है मैं सब पूरा करूंगा। तो प्रहलाद महाराज का जो भाव है कितना ऊंचा है कितना भौतिक रूप से विपरीत है क्योंकि प्रार्थना समझते हैं मामा प्रलोभ उत्पत्या सत्तम कामेश सत्संग तो निर्विन्न मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। तो कहते हैं हे प्रभो मामा मत मत नहीं नहीं क्या प्रलोभ उत्पत्या सत्तम कामेश हे प्रभो मैं बहुत आसक्त हूँ मैं बहुत कामी हूँ और ये भौतिक आसक्ति और भौतिक काम से जो बंधन आता है उससे मैं बहुत भयभीत हूँ और इस बंधन से बचने के लिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो आप ही अगर मुझे प्रलोभित करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगा शरण में। तो क्या बोल रहे हैं प्रभु भगवान वर देना चाह रहे हैं पर भक्त बोल रहे हैं मुझे वर नहीं चाहिए मैं ऐसे वरों से बचने के लिए आपके पास आया कहाँ ऐसे भक्ति का वर दे सकते हैं। फिर भी भगवान बोलते हैं प्रहलाद कुछ तो मांगो, तो फिर प्रहलाद क्या बोलते हैं अंत में, कामान वराम स्वाम वरदन शभा कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु गुणे वरम। हे प्रभु अगर आप मेरी कामना पूरी करना चाहते हो तो यह मेरी कामना है कि मेरे हृदय में आज के बाद कोई कामनाएं न रहे।
तो मेरे लिए वो ये सुनकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं।
यह शुद्ध भक्ति की झलक ठाकुर स्कंद में आती है, वो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही दिव्य है। सनातन गोस्वामी जो अलग अलग और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वास्तव में गोस्वामी के सब ग्रंथ है वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। एक गोस्वामी ने लिखा, सब गोस्वामी ने हर एक ग्रंथ में रखी है। रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत नाम का सुंदर ग्रंथ लिखा है, उसमें अलग अलग अवतारों के तत्वों का वर्णन है। तो उसमें बताते हैं कि भगवान के अनेक अवतार है, उसमें से दो अवतार जो है पारावस्थ अवतार है। पारावस्था मतलब वो बड़ी ही दिव्यता में स्थित है। क्यों? परा अवस्था मतलब स्थिति, परा मतलब दिव्यता। क्यों? क्योंकि उनमें रस का आदान प्रदान दिखाई देता है। ये जो अवतार कौन है, नरसिंहदेव और रामचंद्र, और उनके परे जो है भगवान श्री कृष्ण है। सातवें स्कंद में अधिकांश रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति का वर्णन है, और उसके बाद में प्रहलाद महाराज और अद्भुत ब्राह्मण की चर्चा है। उसमें उस भक्ति के स्तर पर वर्णाश्रम धर्म के द्वारा कैसे पहुंचना है उसका वर्णन है। अब आठवें स्कंद में अनेक लीलाएं हैं, पर उसकी प्रधान लीला कौन सी है, वामन देव की लीला है। अब यहाँ पे भी हम कैसे भक्ति साधारण धर्म से कितनी अलग है। साधारण लोग संकल्पना क्या होती है, धर्म करूंगा तो अर्थ मिलेगा। साथ ही समय भगवान प्रहलाद महाराज बोले कि आप मुझे कोई अर्थ नहीं चाहिए, मैं अर्थ से बचने के लिए आपके पास आया। पर वही भक्ति की शरणागति इतनी ऊंची दिखाई गई है कि भगवान के शरण जाने के कारण भक्त अपना अर्थ खो देता है। गोकुलानंद भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गौरता रूपा देखी जाए तो वामन देव के शरण जाते हैं बलि महाराज, और क्या होता है, सब कुछ खो बैठते। तो भक्ति में ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान के शरण जाने से सब कुछ खो जाएंगे? तो वास्तव में वो खोए नहीं, वो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं, वे भगवान के भगवान का सानिध्य, जब अर्थात बन जाते हैं तो भगवान के पार्षद बन जाते हैं। भगवान क्या होता है, हम भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं, पर क्या होता है बलि महाराज के लिए, भगवान उनके पार्षद बन जाते हैं, भगवान उनके सदस्य में उनके द्वारपाल बन जाते हैं। उनके इस तरह से भक्ति की अलौकिकता दिव्यता का वहां पर बहुत अच्छी दर्शन है। और फिर नौवे स्कंद में प्रभु श्री रामचंद्र का वर्णन है, पर संक्षिप्त रूप। क्यों? क्योंकि रामायण पहले ही लिख चुके हैं और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो वास्तव में वे जानते हैं कि परीक्षित महाराज के हृदय का आकर्षण प्रभु श्री रामचंद्र से अधिक भगवान कृष्ण के है। कई कारण है, उनका स्वाभाविक रस भी है, और क्योंकि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनपे अनुकंपा, उनके जो प्रभुता थे, पितामह थे, दादा थे अर्जुन, उनपे कितनी कृपा की है ये जानते हैं, इसीलिए वे भागवत वे दशम स्कंद में जोड़ देते हैं कि कृष्ण के राम कृष्ण से का वर्णन संक्षिप्त में पूरा कर देते हैं। और वहां पर भी बहुत लीलाएं हैं, हरिश्चंद्र की लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, पर यहाँ पे जो अवतार का तत्व है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो अवतारों का इन 22 अवतारों का वर्णन है, इनका ही विस्तार आगे। तो नौवे स्कंद में इसके पहले आए थे परशुराम जी, परशुराम जी का वर्णन भी नौवे स्कंद में है, पर यहाँ पे जो एक श्लोक में अभी खत्म किया जा रहा है वो बाद भागवतम में हजारों श्लोकों में विस्तारित होने वाला है। और दशम स्कंद में भी जो दशम स्कंद में 3 विभाग है, 40 अध्याय जो है द्वारका लीला है, अगले 10 अध्याय जो है पहले 40 अध्याय वृंदावन लीला है, अगले 10 अध्याय जो है मथुरा लीला है, और आखिरी 40 अध्याय जो है वो द्वारका लीला है। वास्तव में द्वारका लीला उसमें से सिर्फ पहले 25 अध्याय है, अगले 15 अध्याय जो है वह अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, पर क्योंकि उस उन लीलाओं के समय भगवान द्वारका में थे इसलिए सबको द्वारका लीला बताया गया है। और ये दशम स्कंद जो प्रवेश होता है पद्म पुराण में भागवत महात्म्य है, उसे बताया गया है कि दशम स्कंद जो है वो भगवान के सुंदर चेहरे के समान है। और इसमें जो भगवान की प्रतिमा बताई गई है, भगवान का व्यक्तित्व बताया गया है, वह अलौकिक है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं विष्णु पुराण में आती है, पद्म पुराण में आती है, महाभारत में आती है, हरिवंश में आती है, पर जो माधुर्य भागवतम में है वह कहीं और नहीं है। और फिर ये दशम स्कंद में जो लीलाएं हैं, ये सब लीलाओं को वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर हम भागवतम में अवतार व्रतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद में साधारणतया कोई कहानी होती है, कोई मूवी चल रहा है, तो जो कोई मूवी का अंत कैसे होता है कि बड़े आनंद में अंत होता है। पर भागवतम में क्या होता है, दशम स्कंद के बाद में ग्यारहवें स्कंद में यदुवंश के विनाश का वर्णन है, भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने का, भगवान कृष्ण के भौतिक जीवन त्यागने का वर्णन है। तो ऐसा वर्णन क्यों करते हैं, तो वहां पे भागवतम का सबसे विस्तारित स्वज्ञान का उपदेश वो वहां पे आता है, जो सातवें अध्याय से लगभग 33वें अध्याय तक 11वें स्कंद के वो है उद्धव गीता। और हमारे आचार्य ने उद्धव गीता से इतना कोट किया है और इतना वहां पे वर्णन बताया गया है कि भक्त स्वामी ठाकुर ने स्वयं उद्धव गीता तात्पर्य लिखा, चक्रवर्ती बात के तात्पर्य लिया, और वो गीता उद्धव गीता नाम है। और कई बार हमारे आचार्य बताते हैं, और क्यों बताते हैं, तो अभी लगभग सब विस्तार लीलाएं बता रही है और भगवान कृष्ण की इतना अप्रतिम झलक बताया है उनके जीवन का, उनके व्यक्तित्व का, उनकी लीलाओं का। उसके बाद में इतना तो ज्ञान क्यों बताया है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, नश्वर है, भगवान की लीलाएं यहाँ पे होगी तो भगवान की लीलाओं का अंत नहीं होता है, पर यहाँ पे जो लीलाएं हैं उनका अंत होता है। तो फिर वो तत्व ज्ञान के आधार से क्या होता है, भगवान की लीला और भगवान का तत्व ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि लीलाएं जो है वो हमें एक झलक देती है कि कितना मधुर, कितना सुंदर है, और तत्व ज्ञान जो है वो एक सीढ़ी बताती है। तो वास्तव में अगर लीलाओं का दर्शन नहीं है तो भगवान की ओर आकर्षण नहीं होगा, पर अगर तत्व ज्ञान की समझ नहीं है तो वो लीला है केवल एक आसमान में मनोरंजन के समान रह जाएगी, हम उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस तरह से क्या हो रहा है, भागवतम के पहले स्कंद में जो प्राथमिक भगवान की संकल्पना से भगवान की सर्वोच्च संकल्पना तक प्रगति हो रही है, और उसके बाद में जो है भगवान आए और चले गए, पर वह जो भगवान है उन्होंने एक संदेश दिया है कैसे हम उन तक वापस पहुंच सकते हैं। और जो उद्धव गीता है वो इतनी सुंदर है कि उसमें भगवान एक जगह चक्रवर्ती पात्र के तात्पर्य में कृष्ण बड़े विस्तार से जवाब दे रहे हैं, जो तीन गुणों के बारे में चौथे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, तो वही ऐसा ही सवाल उद्धव पूछते हैं कृष्ण से। अर्जुन कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन ने भी ये सवाल मुझसे पूछा था, पर वो युद्ध था, इसे संक्षिप्त में मैंने जवाब दिया था, मैंने विस्तार से जवाब देता। और फिर उसके बाद में भगवान जो उपदेश देते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है कि उनको बोलते हैं कि सारे शास्त्रों का सार यह है कि क्षण भंगुर है, जो जीवन जो है इतना क्षण भंगुर है, इतना क्षणिक है कि नगण्य, अस्तित्व हीन के बिना जैसे ही है। पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति क्षण भंगुर जीवन से शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर लेता है, वह सबसे बुद्धिमान है। तो मतलब वो कैसे करते हैं, तो राम चक्रवर्ती पाठ बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ तात्पर्य बोलते हैं कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति सौदा करता है, तो अगर मैं किसी के दुकानदार जाता हूँ, कुछ दुकान में जाता हूँ, कुछ खरीदने को, तो साधारण मैं जितना पैसा दूंगा उससे कम कीमत वाली वस्तु दुकानदार देने का प्रयास करेगा। तो पर भगवान की भक्ति ऐसी है कि भगवान को, तो हम चक्रवर्ती पाल बोलते हैं कि भक्त जो है वो भगवान को बुद्ध बना देते हैं। क्या भक्त भगवान को बुद्ध बना देते, तो संभव है, बोलते हैं ये व्रत की बात है, भगवान सबसे बुद्धिमान है, अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान को सुधा सकते हैं तो जूटम छलयताम, भगवान सबसे बड़े सबसे बड़े सहाबत थे। और वहां पर बताते क्या है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान में जाता है, उसको एक रुपया देता है और उसे 1000 रुपए की वस्तु देता है, तो फिर क्या कहेंगे उसको? तो उस व्यक्ति को बड़ा बुद्धिमान कहेंगे, और जो दुकानदार ने 1000 रुपए की वस्तु दे दी वो बड़ा मूर्ख कहना है। तो ऐसे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि जो भक्त है ये इतना क्षणभंगुर जीवन है, कुछ ही सालों का जीवन है, यह भगवान को अर्पण करता है और भगवान से क्या लेता है? शाश्वत जीवन ले लेता है। तो क्या भगवान को फंसाना नहीं है ये? तो फिर बोलते नहीं, भक्त का भी भगवान को फंसाना नहीं है, पर भगवान ये आपकी कृपा है कि वास्तव में इस तरह से आदान प्रदान में कोई बुद्धि नहीं है। छोटे से समय के लिए सेवा करो, शाश्वत काल के लिए वर प्राप्त करो। तो यह बुद्धि की बात नहीं है, ये हृदय की बात है, ये सौदे की बात नहीं है, ये कृपा की बात है। इसलिए भगवान यह भक्त की बुद्धिमत्ता नहीं है, यह भगवान की करुणा है। और फिर इसीलिए ऐश बुद्धिमता श्रेष्ठ, आप बताते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? क्षण भंगुर जीवन लेता है, भगवान को अर्पण करता है, उससे शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर लेता है। और यह उपदेश सुन के, तो ये किस उपदेश श्लोक के बारे में बताया गया है? भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि सारे शास्त्रों के उपदेशों का यही सार है। और फिर उसके बाद 12वें स्कंद में भविष्य का वर्णन है। भविष्य का वर्णन में कलयुग का वर्णन आता है। वहां क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बीमार व्यक्ति को बताए, तुम बीमार हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी दवाई है कि आप पूरे ठीक हो सकते हैं। तो उससे पूछा हो, मैं दवाई लेना चाहूंगा, पर कभी कभी वो आलसी हो जाएगा, दवाई नहीं लेगा, बोलेगा कभी कितनी दवाई कौन लेते। तो फिर उसको अस्पताल में जाते हैं, तड़प पड़े सब लोग, सब लोग इतने तड़प क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको तुम्हारी ऐसी बीमारी थी, दवाई ही नहीं, देखो तुम्हारे लिए दशा हो जाएगी, ये दशा नहीं चाहिए, मैं फिर दवाई लूंगा। तो इसीलिए कलयुग का जो बड़ा ही भयानक वर्णन जो है भागवतम के अंत में, वो किस लिए दिया है? कि यह दशा हम सबकी भी हो सकती है यदि हम जो भक्ति की औषधि है वो स्वीकार नहीं करते, भक्ति योग चिकित्सा है वो स्वीकार नहीं करते हैं। और इससे बताने के बाद फिर 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में अंत होता है। 4वें अध्याय में शुक्र सूदेव गोस्वामी अंत कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को? ऐश सूत, ये सूत गोस्वामी यहाँ पे बैठे है, वह भविष्य में ये सारे भागवतों का पुनः वर्णन करेंगे। और फिर परीक्षित महाराज को उपदेश के साथ पुनः लेते हैं। और फिर बोलते हैं अभी और कुछ सवाल है आपको? तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। पर एक बहुत विडंबना की बात है कि वहां पर सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं कि तुम समझो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और इसलिए भयभीत मत हो जाओ, और आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। और फिर तभी ब्रह्म ज्योति के बारे में पुनः ज्ञान देते हैं। तो सारे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी गुरु के समान है, परीक्षित महाराज शिष्य के समान है, और बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े नम्रता से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को सवाल पूछ रहे। पर जो अंत में क्या होता है, परीक्षित महाराज लगभग सुखदेव गोस्वामी को डांटते हैं, डांटते नहीं है, उनके गुरु ही है, पर उनके हृदय का भाव है, वो क्या कहते हैं? हाय हाय, भगवान के बारे में ज्ञान देने के बाद आपने मुझे ब्राह्मण के बारे में ज्ञान क्यों दिया? कि अगर चक्रवर्ती पाद हम बताते हैं कि अगर कोई ताला कोई कुछ कुछ खाने को नहीं है और कोई साधारण शक्कर मिल जाए तो स्वादिष्ट है, पर अगर कोई बहुत ही स्वादिष्ट मधु मिल जाए तो मधु मिलने के बाद शक्कर का क्या स्वाद रहता है? तो इस तरह से बोलते हैं कि वास्तव में ये तुलना उचित नहीं है, पर इससे बड़ी तुलना क्या है कि भगवान के बारे में बताने के बाद आप मुझे ब्रह्मा के बारे में ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो इस तरह से जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को डांटते हैं, तो डांट सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? समझ गए कि भगवान का ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो वो परीक्षा थी उनकी कि आप सही है कि नहीं, और फिर जब परीक्षित शुक्रदेव गोस्वामी को स्मित करते हुए देखते हैं परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं समझ जाते हैं कि वास्तव में शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे। फिर वो प्रणाम करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, फिर शुक्रदेव गोस्वामी चले जाते हैं, तक आके परीक्षित महाराज को काटते हैं। और तब तक परीक्षित महाराज ध्यान में चले गए हैं और उसके वो तक्षक आके काटने के पहले ही परीक्षित महाराज अपने ध्यान के द्वारा भगवत धाम लौट गए हैं। इस तरह से वास्तव में उनको कोई शाप का प्रभाव नहीं होता है, शाप के पहले ही वे वो नाक का वो सांप काटना है शाप के कारण, उसके पहले ही वे भगवत धाम लौट गए। और फिर भागवत में अलग अलग पुराण का वर्णन आता है 12वें स्कंद में, और अंत में श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में महात्म्य के बारे में वर्णन आता है। और फिर सुंदर प्रार्थनाएं आती है, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान आता है, योगिंद्राय नमस्तस्मै, फिर भागवतम का गुणा आता है, भागवतम वैष्णवानाम प्रियम, और फिर सुंदर प्रार्थना आती है, हे भगवान कृपया आप आपकी भक्ति में प्रणाम करो, भगवत भक्ति दाई। और फिर आखिरी प्रार्थना क्या के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तं नमामि हरि परम, कि वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो है नाम उनके नाम संकीर्तन के द्वारा व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। तो वही जो नाम संकीर्तन था वही जो है ना महाप्रभु हमें प्रदान करने के लिए कलयुग में आए थे। तो आए और उन्होंने जो नाम संकीर्तन दिया है वो प्रभुपाद जी सारे विश्व भर में प्रचार किया है। तो भागवतन में अगर हम रस के स्तर पर देखते हैं तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह अद्वितीय है, और इसको प्रस्थापित किया है चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा। पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थापित भी किया तभी भी वो बहुत ही संवेदनशील थे, बहुत ही संवेदनशील। संवेदनशीलता का मतलब क्या है कि दूसरों की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक तरह से वे हर जगह कहते कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही आदि है, उसको प्रस्थापना करते हैं। पर दूसरी ओर से उनके ही पार्षदों में मुरारी गुप्ता एक ऋषि रामचंद्र के भक्त है, इसी तरह से द्रौपदी गोस्वामी के भाई थे अनुपम, वे भी ऋषि रामचंद्र के भक्त है, और उनको परिवर्तित करने का प्रयास का जोर नहीं दे रहा है उनको मुरारी गुप्ता को और अनुपम को, दोनों को थोड़ी परेशानी आती है। पर जब वो प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति में स्थिर रहते हैं तो फिर क्या होता है, तो उनका गुणगान होता है कि आप कितने स्थिर हो आपके आराध्य देव की पूजा में। पर जब दक्षिण भारत में आते हैं तो फिर दो लीलाएं आती है, एक जगह जब रामेश्वर में आते हैं तो दक्षिण भारत में दो प्रसंग आते हैं। एक बार जब एक राम भक्त मिलते हैं तो पहले जब जाते हैं तो राम राम बोल रहा होता है, दूसरी बार जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण बोल रहा होता है। इधर वहां उसे क्या हो गया, बोले आपकी कृपा है। और फिर दूसरी जगह से हम देखते हैं कि वो जो राम भक्त होते हैं जो बड़े बड़े दुख में होते हैं कि किस तरह से सीता माता का हरण हो गया, तो कहते हैं महाप्रभु स्वयं शास्त्र अग्नि पुराण लेके आकर बताते हैं कि किस तरह से वास्तव में सीता का अपहरण नहीं हुआ था, वो माया सीता ही थी। और मतलब वो राम भक्त के राम भक्ति की सराहना न केवल सराहना करते हैं कि उस राम भक्ति भावनाओं को ऊंचा उठाने के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने। तो इसीलिए रामी गोस्वामी जो बृहद भागवतम में लिखा है उसमें ऐसे बताता है कि जब भोग कुमार अलग अलग लोगों से ऊपर जाते हैं तो वे जब वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठवासी ही सोचते हैं कि नारायण ये कृष्ण से महान है, और यह जो भावना है ये स्वीकार है। क्यों? क्योंकि तो तत्व और रस दो अलग चीजें हैं। जो रस है उसमें हरेक व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार सेवा करता है, अपनी भावना के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपने आराध्य देव जो है वही सर्वप्रिय रहे, और सर्वप्रिय रहे उसमें कोई अनुचित नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु ये भी दर्शाते हैं कि अगर हम हमारी गौड़ीय परंपरा को देखते हैं तो जो भक्त वास्तव में कृष्ण भक्त नहीं थे तो मुरारी गुप्त कभी गुरु नहीं बने हमारे संप्रदाय में। हमारे संप्रदाय के प्रधान गुरु कौन है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, जलाधर पंडित है, तो उनसे शिष्य आते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करते हैं तो वह राम भक्ति का प्रचार नहीं करते, वह नारायण भक्ति का प्रचार नहीं करते, वह किसका प्रचार करते हैं? वह कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। हमारे संप्रदाय में जो गुरु है, जैसे हम जिनको आश्रय है कि आप गुरु बनो, आप शिष्य बनो, आप प्रचार करो, वे सब कृष्ण भक्त है। तो इसीलिए हम जब प्रचार करते हैं तो हम कृष्ण भक्ति का